हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 311 अक्षत की बातें सुनकर और उसे भावुक देखकर नैना भी भावुक हो गई थी। वो अक्षत से प्यार करती थी और प्यार इतनी जल्दी खत्म नहीं होता, न किसी गलतफहमी की वजह से और न किसी तीसरे की वजह से। लेकिन फिर भी नैना अक्षत पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहती थी। शायद वो खुद को दुख से बचा रही थी जिसका उसे कहीं न कहीं अंदाजा था। नैना ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, बोलना बहुत आसान है अक्षत, लेकिन अभी अगर सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई होती तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होता? सोच समझ कर बोलना, क्या तुम मेरे जैसा बर्ताव नहीं करते? अक्षत ने थोड़ा सोचते हुए एकदम ईमानदारी से कहा, हाँ, शायद मैं भी तुम्हारी तरह ही बर्ताव करता। पहले जब मैं ये सुनता तो शायद मुझे इससे भी ज्यादा गुस्सा आता, लेकिन फिर कुछ समय बाद सोचता तो मैं तुम्हें कम से कम एक मौका तो देता सब कुछ समझाने का, और उसके बाद भी अगर मुझे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता शायद तब मैं तुम्हारी तरह बर्ताव करता, लेकिन तुम तो पहले से ही कुछ सुनने को तैयार नहीं हो। अक्षत की बातें सुनकर नैना को भी लगा कि शायद वो कुछ ज्यादा ही अति प्रतिक्रिया कर रही है और उसे अक्षत को एक मौका देना चाहिए अपनी बात रखने का, नहीं तो उनके इतने दिनों के रिश्ते, प्यार और भरोसे का कोई मतलब नहीं बनता। नैना खुद भी अक्षत से दूर नहीं होना चाहती थी और न ही उसके साथ अपने रिश्ते को तोड़ना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो खुद को उसके सामने कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी। इसलिए उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए मुड़कर अक्षत की तरफ देखा और एकदम ठंडी आवाज़ में बोली, ठीक है, समझाओ पूरी बात अपनी तरफ से, मैं सुन रही हूँ। अक्षत भी नैना के एकदम सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखते हुए बोलना शुरू किया, नैना, वो रागिनी, वो झूठ बोल रही है, मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि सुबह जब मैं उठा तो मुझे ज्यादातर बातें याद थीं और उसने जरूर ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा उस दिन, लेकिन फिर भी मैंने कपड़े पहने हुए थे और रागिनी भी एकदम ठीक ठाक दिख रही थी सुबह के वक्त भी। अक्षत की कन्फ्यूजिंग बातें सुनकर नैना ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, एक मिनट रुको, वो ठीक ठाक दिख रही थी और तुमने कपड़े पहने हुए थे, ये सब बातें तुम इस तरह से जोड़कर क्यों बता रहे हो? क्या तुम्हें सच में पूरी रात में क्या हुआ वो याद नहीं? और ये ड्रिंक में क्या मिला सकती है वो? उसके बाद क्या तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जो तुम्हें याद ना हो? और उसे इतना सब कुछ बोलते हुए नैना अपना सिर पकड़कर वहां सोफे पर ही बैठ गई, लेकिन अक्षत उसके मन का डर समझ गया। वो जल्दी से उसके सामने बैठकर उसका एक हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे बीच, और वो ये सब कुछ बस मुझसे बदला लेने के लिए कर रही है क्योंकि मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। नैना ने अपना सिर उठाकर अक्षत की तरफ देखते हुए पूछा, कैसा प्रपोजल? अक्षत ने उसे याद दिलाने की कोशिश करते हुए कहा, कल रात वहां पर पार्टी में भी तो बताया था मैंने। नैना को फिलहाल वो बात याद नहीं थी, इसलिए उसने गुस्से में घूरकर अक्षत की तरफ देखा, तो अक्षत ने फिर से उसे बताया, अरे देखो, मैं और रागिनी साथ में एक वेब सीरीज में साइन हुए थे, लेकिन फिर मुझे मूवी ऑफर हुई और दोनों के डेट सेफ थे तो मैंने वो वेब सीरीज का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उस टाइम हमारी टीम ने मुझे और रागिनी को लेकर हमारे फेक अफेयर की न्यूज मीडिया में देने की बात की थी, लेकिन फिर जब सब कुछ कैंसिल हो गया तो मैंने इस बात के लिए भी मना कर दिया, लेकिन रागिनी ने पर्सनली मुझे अप्रोच किया था ये बोलकर कि वो सच में मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करता था, और बस तब से वो मुझे उस दिन पार्टी में मिली थी और कल पार्टी में मेरे सामने आई और बोलने लगी कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो सच में उस बात का ही बदला ले रही है जो मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। पूरी बात जानने के बाद नैना ने आखिर में सवाल किया, ओ माय गॉड, सच में? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? अक्षत ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, सिर्फ लगता नहीं, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल श्योर हूँ नैना, लेकिन प्लीज डोंट लीव मी, क्योंकि अगर ऐसे में तुम मुझे छोड़कर चली गई तो उसे मौका मिल जाएगा मेरी लाइफ में आने का, और मैं उसे वो मौका नहीं दे सकता। मैं उस लड़की को या किसी को भी कभी तुम्हारी जगह देने के बारे में सोच भी नहीं सकता नैना, लेकिन अकेले में बिल्कुल बेबस हो जाऊंगा और कमजोर भी। प्लीज डोंट गो अवे। ये बात बोलते हुए अक्षत बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया। उसने नैना का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कि वो कुछ भी हो जाए लेकिन उसका हाथ नहीं छोड़ेगा, और उसकी तरफ देखकर रिक्वेस्ट करने लगा। नैना ने एकदम ब्लैंक चेहरे के साथ कहा, लेकिन अगर ये बात सच है तो आई हैव टू गो अवे फ्रॉम यू। इतनी बात होने के बाद भी नैना ने ऐसा कहा तो अक्षत एकदम सन रह गया। वॉट, इसका मतलब तुम्हें अभी भी मेरी बात पर भरोसा नहीं है और तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें भोखा? वो चाहकर भी अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, लेकिन आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर बहने लगे थे। अक्षत की आंखों से निकले आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हुए नैना ने कहा, नहीं, मुझे पता है तुमने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। तुम्हारी आंखों में मैं सच्चाई देख सकती हूँ अक्षत, एंड आई एम सॉरी। मैंने कल से लेकर अब तक जैसा भी व्यवहार किया, लेकिन आई होप तुम मेरी स्थिति भी समझ पाओगे कि ये जानने के बाद मैं कैसा महसूस कर रही थी। मुझे अपनी भी पूरी दुनिया एकदम उजड़ी हुई सी लगने लगी थी और तुम्हारे बिना तो मैंने जैसे कुछ भी इमेजिन ही नहीं किया है अपनी लाइफ में। तो फिर, नैना की बातें सुनकर अक्षत ने थोड़ी राहत की सांस लेते हुए सवाल किया, अच्छा, इसका मतलब अब सब कुछ क्लियर हो गया है हमारे बीच, तो फिर तुम मुझसे दूर जाने वाली ये बात क्यों बोल रही हो? नैना ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, उसके पीछे एक कारण है, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर ये रागिनी सच में झूठा नाटक कर रही है तो जरूर इसके लिए उसने फुल प्रूफ प्लानिंग की होगी और हो सकता है उसने झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट भी तैयार करवा रखी हो और डॉक्टर को भी अपने साथ मिला लिया हो। इसलिए हमें नाटक करना होगा कि उसका प्लान कामयाब हो गया है और हम दोनों अलग हो गए हैं। नैना का प्लान सुनकर अक्षत सीधे ही मना करते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। और क्यों करना है ऐसा नाटक? मैं उस रागिनी से ऐसे भी नहीं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि जब मुझे पता है वो झूठ बोल रही है तो झूठ तो एक न एक दिन सामने आ ही जाता है, तो मुझे दूर जाने की और ऐसा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है नैना। अक्षत के गाल पर अपना हाथ रखकर उसे समझाते हुए नैना ने कहा, जरूरत है अक्षत, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, और इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, लेकिन फिलहाल तुम ये बताओ, वो जीजू और सुनैना, उन दोनों के बारे में क्या पता चला तुम्हें? फिर बात का टॉपिक बदलते हुए नैना ने पूछा। अक्षत नैना के इस सवाल का कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही स्वीटी अपने हाथ पीछे बांधकर टहलती हुई वहाँ हॉल में वापस आ गई। उसने देखा कि नैना ने अक्षत के गाल पर अपना हाथ रखा हुआ है और अक्षत ने भी अपना हाथ उसके हाथ पर रखा है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर कुछ बातें कर रहे हैं। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कुछ तो फायदा हुआ है मेरे यहाँ से जाने का। मैंने कहा था ना, बात करने से सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, थैंक यू सो मच स्वीटी, मुझे नहीं पता था इतनी छोटी होकर भी तुम इतनी समझदार हो।
स्वीटी एकदम सीरियस होकर सामने पड़े सिंगल सोफे पर बैठते हुए बोली, समझदारी का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि देखो आदित्य भैया, वो तो मुझसे कितने बड़े हैं लेकिन फिर भी ऐसे बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, फिर से कहीं गायब हो गए हैं, और इस बार तो भाभी भी। स्वीटी ने भी आदित्य का जिक्र किया तो अक्षत को नैना के सवाल भी याद आ गए और वो दोनों बातों का एक साथ ही जवाब देते हुए बोला, अच्छा हाँ आदित्य, नहीं वो गायब नहीं हुआ है, जहाँ तक मुझे पता चला है वो शायद किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है और उसका एक्सीडेंट भी हुआ है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो कहाँ पर है, किस हॉस्पिटल में, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। शायद सुनैना को इस बारे में पता हो, इसीलिए ही वो भी अब तक वापस नहीं आई, लेकिन बाकी लोगों को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उसकी कंपनी के लोग सब कुछ सीक्रेट रखना चाहते हैं जिससे कि उनके दुश्मनों को कोई मौका न मिले। अक्षत की ये बातें सुनकर वो दोनों लड़कियां हैरान रह जाती हैं। स्वीटी का एक्सप्रेशन भी एकदम ही बदल गया और वो परेशान होते हुए बोली, नहीं भैया को कुछ नहीं हुआ होगा, वो बिल्कुल ठीक होंगे, और भाभी, अगर वो सच में भैया के पास गई है तो उन्होंने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? उन्होंने तो कहा था कि वो मुझे कॉल करके बता देंगे, तो फिर नहीं, ये नहीं हो सकता, वो दोनों ठीक होंगे, है ना नैना दी? इतना बोलकर स्वीटी बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगी, क्योंकि आदित्य के एक्सीडेंट के बारे में उसे कोई भी खबर नहीं थी। नैना खुद भी सुनैना और आदित्य के लिए परेशान थी, लेकिन वो फिर भी स्वीटी को रोते नहीं देख पाई और उसे गले लगाकर चुप कराते हुए बोली, चुप हो जाओ स्वीटी, इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं है, और वो दोनों जहाँ पर भी हैं जरूर बिल्कुल ठीक होंगे, और अगर उन्हें कुछ भी हुआ हो तो जल्दी से ठीक हो जाएं। लेकिन मैं समझ सकती हूँ, तुम तो उनके साथ रहती हो, तुम्हें ज्यादा फिक्र होगी उनकी, स्वीटी सिसकते हुए बोली, हाँ, क्योंकि भैया तो कल सुबह जब से ऑफिस गए थे तब से ही वापस नहीं आए, और फिर आज सुबह से भाभी भी, क्यों करते हैं ये दोनों ऐसा, कम से कम एक बार हमें बता देते पूरी सिचुएशन। अक्षत ने थोड़ा सा सोचते हुए स्वीटी से सवाल किया, एक मिनट, किसी और का नंबर है क्या तुम्हारे पास, ऑफिस या कंपनी में से किसी का? स्वीटी पहले तो मना करते हुए बोली, लेकिन फिर उसे याद आया तो वो एकदम से बोली, नहीं, मैं ऑफिस या काम के मामले में कुछ भी नहीं जानती और ना ही किसी से मिली हूँ, तो फिर नंबर तो बहुत दूर की बात है, लेकिन शायद गीता दी के पास रवि सर का नंबर होगा। हम उन्हें कॉल करके शायद इस बारे में पता कर सकते हैं। अक्षत ने थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहा, अरे तो फिर सोच क्या रही हो, गीता के पास या फिर घर पर फोन कॉल करो और गीता से रवि का नंबर मांगो। स्वीटी ने सफाई देते हुए कहा, हाँ ये बात बस मुझे अभी याद आई जब आपने मुझसे पूछा, नहीं तो मेरे दिमाग से तो निकल ही गई थी। नैना स्वीटी के पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, कोई बात नहीं, ऐसे टाइम और सिचुएशंस में ऐसा ही होता है, क्वाइट नॉर्मल। लेकिन अब याद आ गया है तो फिर देर मत करो। इसके बाद स्वीटी ने अपना मोबाइल फोन निकालकर उसमें गीता का नंबर सर्च किया और डायल करके उससे रवि का नंबर मांगा। क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी तो गीता ने भी कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप स्वीटी को रवि का नंबर भेज दिया। रवि को आदित्य के पर्सनल असिस्टेंट नदीम से फोन कॉल पर निर्देश मिले थे और इसीलिए वो अपना काम कर रहा था जो भी उससे कहा गया है। लेकिन उसे आदित्य के बारे में फिलहाल कोई भी ठोस जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे इतना पता था कि आदित्य जहाँ भी है सेफ है। क्रमशः